नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज पार्ट टू। जी हाँ, इसका पहला पार्ट हम आपको सुना चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहे हैं और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज पार्ट टू।
नमस्कार शिक्षार्थियों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम लेसन टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने बात की, मैंने बताया आपको कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल लाइब्रेरीज और नेशनल लाइब्रेरीज। इन सब में जो हमने डिस्कशन किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो ये था कि हम पब्लिक लाइब्रेरीज कैसी होती हैं, किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है, उनका फ़ायदा ओवरऑल सोसाइटी को किस तरह से होता, उससे हर इंसान के पर्सनैलिटी में कह सकते हो आप, या लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में किस तरह वो अपना रोल निभाती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज। और उसके बाद हमने एकेडमिक लाइब्रेरीज में बात की, स्कूल लाइब्रेरीज के बारे में। स्कूल लाइब्रेरीज हर स्कूल में होती हैं और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका सबसे अहम ऑब्जेक्टिव ये है स्कूल लाइब्रेरी का, वो चाहती हैं स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनके एक रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो जाए, वो रीडिंग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग या स्टोरी पे एक डिस्कशन करना, जानना, स्टोरी से आपका एक करेक्टर भी बन जाता है। तो वो जितने आप छोटे स्कूल लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो वहाँ पर लाइब्रेरीज का जो रोल है बहुत ही अच्छा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों के लिए। तो दूसरी बात ये थी, वहाँ पर हम डिस्प्ले क्यों करते हैं किताबें, जो नई किताबें आती हैं स्कूल में, हम इसलिए नई बुक्स को डिस्प्ले करते हैं ताकि जो बच्चे आए हैं उन्हें ये पता चले कि हमारी लाइब्रेरी ने क्या एडिशन किया है, क्या नया कुछ लाया है लाइब्रेरी में। और उन सब किताबों को देखना, पढ़ना, ये सब जब आपके पास सामने कोई भी चीज़ होगी तो डेफिनेटली आप उसको देखना पढ़ना चाहेंगे, यू लाइक टू गो थ्रू इट। ये था स्कूल लाइब्रेरीज के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कॉलेज लाइब्रेरीज के बारे में। अगर आप इस लेसन को जैसे भी पहले भी आप देखेंगे, आपके YouTube पे भी अवेलेबल है और आपके पास एक लाइब्रेरी है दीप के नाम से, ई लाइब्रेरी है हमारे NIS की वेबसाइट पे, आप दीप आइकन को जब भी क्लिक करेंगे उस पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको दो तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। एक टाइल पे आपको NIS के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, एक पे आपको ई रिसोर्सेज मिलेंगे। आप जो भी देखना चाहेंगे, आपको जो NIS के ई रिसोर्सेज में आपको ये सब रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ऑडियो वीडियो भी मिलेगा, और जो ई रिसोर्सेज हैं आपको बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स फ्री हर किसी का एक्सेस है उसमें, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बुक मार्क्स भी लगा सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहेंगे वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके लिए। तो आप ज़रूर दीप लाइब्रेरी को क्लिक करना चाहिए आपको, और आपको देखना चाहिए कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल है। और अब जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो हम कॉलेज लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि 12th क्लास के बच्चे जो भी हैं इसके बाद कॉलेज में ही जाते हैं। तो कॉलेज में लाइब्रेरीज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाती है? यूजुअली आप देखेंगे स्कूल लेवल तक आपके पास एक करिकुलम होता है, एक टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो सारा करिकुलम आपके टेक्स्ट बुक्स में ही डिवाइस होता है, उसी में ही आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा बहुत कम बच्चे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम भी होता है वो आपको NCERT की उन्हीं बुक्स में से होता है। सो जो 12th तक का जो ज़्यादातर लेवल है, इसलिए लाइब्रेरीज का बहुत फ़ायदा है। मगर कॉलेज में आपका बिना लाइब्रेरी के काम नहीं चल सकता, क्योंकि आपका जो करिकुलम है उसमें आपको एक चैप्टर के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए कई कई चीज़ें आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ से आपको नोट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, फिर अपने पास जिस रखेंगे जिसको आप पढ़ेंगे और लेटर ऑन एग्ज़ाम में इस्तेमाल करेंगे। तो लाइब्रेरी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है, आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा एक बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको टेक्स्ट बुक्स के अलावा रेफरेंस बुक्स, कई ऑथर्स के बुक्स, कई तरह की इनोवेटिव चीज़ें मिलेंगी, जो कि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से पढ़ सकता है। तो ये ज़्यादातर टीचर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होता खाली टेक्स्ट बुक से पढ़ाना, टीचर्स को भी जो एडिशनल टूल्स चाहिए होते हैं, एडिशनल चीज़ें जो चाहिए होती है पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, वो सब लाइब्रेरी ही उसमें हेल्प कर देती है। इस तरह से आपको कॉलेज लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी में जाना, पढ़ना, एक डिपेंडेंसी भी लाइब्रेरी की ज़रूरी है और आपकी एक सेल्फ लर्निंग की हैबिट भी डेवलप हो जाती है जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी को ज़्यादातर जो डिवाइड किया गया है वो है जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज तो वो आपका लेवल हो गया, ट्वेल्थ क्लास का लेवल भी हो गया, फिर डिग्री कॉलेज जहाँ पर हम डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटी लेवल भी हैं। तो कॉलेज लेवल में हम प्रोफेशनल कॉलेजेस तक हैं, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉलेज लाइब्रेरी के, कि किन ऑब्जेक्टिव से लाइब्रेरी को बनाया जाता है। ज़्यादातर देखा जाए जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी जानकारी होने के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए या बाकी डिसिप्लिन्स के बारे में बात करने के लिए, वो सारी जानकारी आपको लाइब्रेरी ही देती है। लाइब्रेरी आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है जिससे कि आप जो आज पढ़ रहे हैं इसे आगे कैसे बढ़ेंगे, इसे अगली वाली तरक्की के लिए आप कैसे जाएंगे, या आप अगर अपने लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपनी इस पर्टिकुलर क्लास के अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, वो भी आपको लाइब्रेरी से ही मिलेगा। ये अपने स्टूडेंट्स को, जो उनके लर्नर्स हैं कॉलेज लाइब्रेरी के, उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे शोल्डर करना है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कैसे काम करना है जब आप पे आएंगी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, काम करेंगे, सिविक ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर किस तरह से आप काम करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी जो होती है वो हमें लाइब्रेरीज ही देती हैं। तो ये इस तरह से ये बच्चे इतना ट्रेंड हो जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, नॉलेजेबल बन जाते हैं और बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जो हम सब लोगों को ज्ञानवर्धक बनाता है, जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। ये हमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में भी बताएगा। जब आप ट्वेल्थ तक होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या आपके पास मीडिया से रिलेटेड, या देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज, कितने तरह के कोर्सेज हैं, ये सब कॉलेज में आप जब जाते हैं वहाँ पर आपको लाइब्रेरी में जाने से इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। ये कॉलेज लाइब्रेरी का मेन देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव है, दिशा है कि क्या किस किन दिशाओं पे हमें काम करना है। फंक्शंस क्या हैं कॉलेज लाइब्रेरीज के? फंक्शंस में ये कहा जाता है कि ये जो कॉलेज लाइब्रेरीज हैं, ये चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे टीचर्स हो या कोई आपके रिसर्च डिपार्टमेंट हो, इन सभी लोगों को पढ़ने और रिसर्च करने में ये काफ़ी सारा मदद करती है। हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ जो आपको मिल जाएंगी, जैसे लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, ये सब आपको यहाँ पर ही मिलेंगी, ये लाइब्रेरी ही दिलवाती है हमें। एक तो हमारे पास कभी कभी कॉलेज लाइब्रेरीज में जो करिकुलम बेस्ड किताबें होती हैं, आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में यूजुअली देखोगे, वहाँ पर टेक्स्ट बुक्स की भी कई कॉपीज़ रखी होती हैं उन्होंने, ताकि हर बच्चे को एक कॉपी खरीदना ना पड़े, वो वहाँ से लेकर के पढ़े। यूजुअली प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये मैंने देखा है वहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, तो ये फैसिलिटी भी आपको लाइब्रेरी दे सकती है। या आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए वाइड रेंज, बहुत सारे ऑथर्स की सेम सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें चाहिए, वो भी आपको कॉलेज ही दे सकता है। और इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीरियोडिकल्स या बैक वॉल्यूम्स, कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल तो नहीं रख सकता है इतने पीरियोडिकल्स, या हमारे 10 साल से 20 साल से बैक वॉल्यूम्स को रखना, संभालना, उन्हें बाइंड करके रखना, तो ये सब लाइब्रेरीज ही काम करती हैं। ज़्यादातर मीडिया से रिलेटेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एडेड टीचिंग जो भी है, उसमें कई तरह की मदद जब टीचर्स को चाहिए होती है, टूल्स फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से बेस्ट टीचिंग वो अपना परफॉर्म कर पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, वहाँ पर भी लाइब्रेरी बहुत मदद करती है। इतने सारे न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करना, मैगजीन्स, जर्नल्स, या आपके पास बायोग्राफीज, इतनी तरह की रिक्रिएशनल बुक्स जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सिर्फ एक लाइब्रेरी ही करती है। और कॉलेज लाइब्रेरी में आपको ये सब मिलता है। ये तो हो गए फंक्शंस, अब हम बात करेंगे इनके सर्विसेज। लाइब्रेरी जो कॉलेज लाइब्रेरी, वो यूजुअली सब हर कॉलेज मिनिमम क्या सर्विसेज देता है? ये आपको रीडिंग, लेंडिंग और टेक्स्ट बुक सर्विसेज देते ही हैं, जिसमें आप इनको इशू कराना टेक्स्ट बुक्स को, या वहाँ बैठकर आपको पढ़ने की फैसिलिटी, जगह, ये सब मिलता है आपको। ये स्टूडेंट्स को जो उनके कैटलॉग्स होते हैं, मैनुअल कैटलॉग्स जो होते हैं, जो हाथ से बनाए गए कैटलॉग कार्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना, उसके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढना है, वो भी बता सकता है। या अगर आपके पास कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग है, वो भी आपको लाइब्रेरी ही असिस्ट करेगी किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं अपनी किताबों को। आपके अगर आप किसी रेफरेंस बुक को ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, कई तरह की इन्हों लाइब्रेरीज में आपको लोकेशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में जा कर के मुझे, या पीरियोडिकल सेक्शन है, या रेफरेंस सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, ये सब लाइब्रेरी कॉलेज की सर्विसेज में ही आता है। ये अपने स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी रिसोर्सेज किस तरह से मैक्सिमम यूज़ करें, एफिशिएंट वे में कैसे आप यूज़ करेंगे, वो भी समझाते हैं, या रेफरेंस और रेफरल मटेरियल कैसे मिलता है लाइब्रेरी के मेंबर्स को, वो भी बताते हैं। नई बुक्स को डिस्प्ले करना, नए मटेरियल को डिस्प्ले करना, या मल्टीपल मीडिया जो है कैसे इक्विप करते हैं अपने रीडर्स को, उनको सिखाती हैं नई चीज़ें। जैसे कि स्टार्टिंग में जब इंटरनेट कहीं भी नहीं था, सबके पास अफोर्डेबल नहीं होती थी, एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट एक्सेस होता था, तो सब लोग आकर के लाइब्रेरी में से यूज़ करते थे। रेप्रोग्राफिक सर्विसेज में आपको अगर किसी तरह की फोटोकॉपी करनी है, स्कैन कॉपी करनी है, ये सब फैसिलिटी भी आपको लाइब्रेरी, अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी कमिटीज़। लाइब्रेरी कमिटीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि अगर हमें परचेज करना है, ये सब मटेरियल जो हम खरीदेंगे लाइब्रेरी के लिए, ये एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसके लिए हमें एक कमेटी बनानी ज़रूरी पड़ती है, ताकि हम सब लोगों की बात को रख के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसे डिस्कस करें, उस सबकी राय लें, ताकि हमें ये लगे कि हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, और इसमें सबका फ़ायदा है। इस तरह से लाइब्रेरी कमेटी बनाई जाती। इस लाइब्रेरी कमेटी में हेड कौन करता है? या तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो करते हैं, और जो आप के इसमें मेंबर कन्वीनर ज़्यादातर लाइब्रेरी कमेटी के लाइब्रेरियन होते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी भी लाइब्रेरियन ही होते हैं, बाकी फैकल्टी जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, ताकि हमें जो सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स लेनी है, हम उन्हीं सब्जेक्ट्स के लोगों को ले करके वो लोग बुक्स चूज़ करें, देखें जो लाइब्रेरी में बुक्स आ रही हैं, परचेज हो रही हैं, वो सही हो रही हैं, गलत तो नहीं आ रही किताबें, उन सबको देख के वो एक मेंबर, उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लाइब्रेरी की जो कलेक्शन है वो किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह से लाइब्रेरी कमेटी होना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। तो अब आप देखेंगे एग्जांपल्स, आप किसी भी कॉलेज में जाएं, आप कोई भी DU का कॉलेज देख लीजिए, या आप किसी भी स्टेट में किसी भी कॉलेज में जाएं, यहाँ पर हमने किरोड़ीमल कॉलेज की या लक्ष्मी भाई कॉलेज की एग्जांपल दी है, बट देर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देख सकते हैं उन कॉलेजेस में जाकर के एक बारी कैसे वो लाइब्रेरीज रन करते हैं, कैसे वो चलाते हैं लाइब्रेरीज को। ये हमारे पास एक सवाल इसमें ये है, कंपोजिशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी क्या है कॉलेज के लिए? कॉलेज में मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पर, वो उसके हेड होते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी आपके लाइब्रेरियन होते हैं, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी फैकल्टी होती है, एकेडमिक फैकल्टी, वो सारे मेंबर्स होते हैं। ये है कंपोजिशन उसका। वो सर्विसेज जो डिफरेंट है स्कूल से. स्कूल से ज़्यादा हमें यहाँ क्या सर्विस मिलती है, हमें रेप्रोग्राफी मिलेगी, या हमको कभी कभी देखा जाए तो आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी मिल जाती है कॉलेज में, या आप देखोगे कास मिलता है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज मिलती है, या सिलेक्ट डिसेमिनेशन में आपको आपको बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स भी करके मिलते. तो इस ये स्कूल लाइब्रेरी से इस तरह से डिफरेंट है. तो हम आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बारे में. अब भी तो कॉलेज के बारे में बात की, अब हम कहेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो कह रहे हैं, इंडिया में जो ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की, 1947 में हुई है. ग्रोथ से ये हमें पता चलता है कि जिस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं, एनरोलमेंट किस तरह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रिसर्चेस बढ़ रही हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, रिसर्च स्कॉलर्स ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स, मल्टी डिसिप्लिन्स जो हैं इस तरह से क्रिएट होते गए हैं. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं और लाइब्रेरीज में फैकल्टी मेंबर्स भी ऐड होते रहे. तो इस तरह से लाइब्रेरीज का रोल जो है वहाँ पर बढ़ता गया, क्योंकि इतनी फैकल्टी, इतने लोग, इतने रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इन सबको जो काम करना है वो लाइब्रेरीज के थ्रू ही करना है. क्योंकि जब तक लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश नहीं होंगी वो तब तक इनकी क्रिएटिविटी वाला काम नहीं हो पाएगा. तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ कितनी तरह की हैं, वो जो हमने यहाँ दिखाई हैं वो है कन्वेंशनल, प्रोफेशनल, डीम्ड एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़. ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही होती हैं जैसे हमारा ओपन स्कूल है. जैसे कि हम ओपन स्कूल में आपको बिना स्कूल में आए, आपको यहाँ पर अटेंडेंस लगाए, तब भी आप यहाँ से ट्वेल्थ कर सकते हैं. इसी तरह यूनिवर्सिटी है आपको इग्नू जैसे, जिसका नाम है, वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं, आप वीकेंड्स पे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स देके, वैकेंसी क्लासेस देके, प्रोजेक्ट्स करने के बाद. तो आपको इस तरह से भी डिग्री मिल सकती है. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो है इस्टेब्लिश की, एडमिनिस्टर जो की है और मेंटेन की है, इसके 5 फंक्शन सबसे ज़्यादा हैं, ज़रूरी और अच्छे फंक्शंस हैं. वो है टीचिंग और लर्निंग के लिए इन्हें एस्टैब्लिश किया गया, रिसर्च एंड जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज. नई नॉलेज कैसे जनरेट होती है, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम ढूंढते हैं कि जैसे कि अभी इस 2 सालों से हमारे लिए कोविड एक नई चीज़ है. थर्ड ईयर में आप देखेंगे अब हम बहुत इक्विप हो चुके हैं कोविड के अगेंस्ट. कैसे, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिसर्च हुई, हमारी नई नॉलेज का जनरेशन हो गया, नई चीज़ें पता चल गई जो कि हमने डे टू डे चीज़ों में सीखी, डे टू डे रिसर्च हुई, एक दूसरे से बात करके हुई, या प्रोजेक्ट्स में हमने देखा किस तरह की बीमारी था, इससे कैसे जूझ रहे थे लोग और किस तरह से हमने इसे ओवरकम किया, कैसे हमने इससे छुटकारा भी पा लिया किसी हद तक. तो इस तरह से ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में या स्पेशल लाइब्रेरीज़ में इन्हीं तरह की रिसर्च होती रहती है. तो इससे ये सब लाइब्रेरीज़ में इसका मटेरियल छप के आता है जो आगे लोगों को पढ़ने में काम आता है. तो यही नॉलेज अब हम कंजर्व करेंगे. अब हमने अगर इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, पेपर्स आ गए, हमने इतने सारे सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, या हमने कॉन्फ्रेंसेस की, तो उन सब का जो आउटपुट था, उन सब की जो प्रोसीडिंग्स थी, उन सब की जो रिपोर्ट्स थी, वो सब कहाँ, वो लाइब्रेरी में ही रहती है. तो वो लाइब्रेरी जो है उसे प्रिजर्व करती है आगे के लिए. तो उस प्रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वो रिसर्च हमारे आगे बढ़ती है, हमें पीछे वाले काम को नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है. इस तरह से आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं, बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल मिला है उनको, ताकि अपने डिमांड्स स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर्स की, मेंबर्स की, बहुत सारे एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, हर तरह के लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनकी तरह की काम करने के लिए और उसे प्रिजर्व भी करने के लिए. ये इसके 5 जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी हायर एजुकेशन की लाइब्रेरीज के हैं, ये वो 5 फंक्शंस थे. ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग यूनिवर्सिटीज इन अचीविंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू कोप विद द मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज, ताकि हम हर तरह से काम कर पाए। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अचीवर्स को सपोर्ट करती है हर तरह से, ताकि हम हर डायरेक्शन में सोच पाए, पढ़ पाए, सपोर्ट मिलके हम आगे बढ़ पाए। ये क्या करती है, ये चाहे मैनेजर लोग हों, प्रोफेशनल लोग हों, या गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हों, किसी भी तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से, उन सबको, उन सब की जो रिसर्च है, या उन वो सब लोग जो भी काम करते हैं, उससे हमें ओवरऑल देखा जाए एक सोशल पर्पस के लिए काम करते हैं। हर कोई एक सोशल पर्पस के लिए काम करते हैं। जब आप सोशल पर्पस को अचीव करते हैं, दैट मीन्स यू हैव अचीव दैट पार्ट विच यू रियली वॉन्टेड टू मेक पीपल अवेयर। लोगों को जानकारी होगी उस सब्जेक्ट से, उस चीज़ों से जिन पे रिसर्च चल रही है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। वो अपने जो रिसर्च वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारा हेल्पफुल रहती है, अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से, जो उनके पास बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जिस तरह से रिसर्च करना ईजी हो जाता है उनको, जिससे देखा जाए अगर हम रिसर्च वही फ़ायदेमंद है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो बेहतर हो जाए। ज़िंदगी में बेहतरी आने का मतलब यही हुआ, अगर जो हमने कुछ पढ़ा, जो हमने रिसर्च किया, जो हमने कुछ जाना, उससे कोई किसी का फ़ायदा हुआ, जो एप्लीकेशन है, नहीं कि हमने पढ़ा और उसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, वो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम लाइब्रेरीज के बारे में इतना पढ़ते हैं, जानकारी करते हैं, तो हमें लाइब्रेरीज का यूज़ और कैसे हम इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ, तो ही फ़ायदा है लाइब्रेरीज का। तो ये वो मिनिमम फंक्शंस जो है, ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी लाइफ बेटर हो जाए, लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाए, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ कितना पार्टिसिपेट करती है। इसी नॉलेज को आगे के लिए प्रिजर्व करने के लिए, पोस्टीरियरिटी के आगे के लिए रखने के लिए, उसमें भी हमें यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मदद करती है। फंक्शंस जो हैं वो इस लाइब्रेरी को देखा जाए तो ये बेसिकली क्या करती है, ये डेवलप करती है प्रिंट मटेरियल को, मीडिया से रिलेटेड रिसोर्सेज को, और जिससे हमारे सब्जेक्ट्स में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, पब्लिकेशन, ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है अपने पास रख के, ताकि हम जब भी जिसे यूज़ करना हो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हर जगह हम इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखती हैं। ये एक तरह से लाइब्रेरी की जो है कलेक्शन जो है, वो बेस्ट कलेक्शन जो है नॉलेज का, वो अपने रीडर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ करके रखती है। डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट रहती है, हमारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें एंटिसिपेटरी या रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन देती है। एंटिसिपेटरी वो जो मैंने, आपने मुझसे मांगी नहीं, मैंने पहले से ही एंटिसिपेट किया, मैंने पहले से ही, मैं समझ गई कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी जा सकती है, तो मैंने उसकी तैयारी की। रिस्पॉन्सिव वो जो आपने खुद मुझसे पूछा और उसका मैंने रिस्पॉन्स करके दे दिया। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स को एक लाइब्रेरी जाने से जो प्लेजर मिलता है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, पर्सनल ग्रोथ हो जाती है, या आपका माइंड जो इंटेलेक्ट है आपका शार्प हो जाता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइब्रेरी इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अभी जो हम बात कर रहे थे, हम अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में क्या क्या सर्विसेज हैं, इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में सबसे बेस्ट सर्विसेज मिलती है हमें, रीडिंग, राइटिंग, लेंडिंग की, बिब्लियोग्राफिकल इंस्ट्रक्शन, एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हमेशा देती है, या आपका कैटलॉग की कैसे यूसेज करेंगे उसकी असिस्टेंस देती है, लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का क्या है, रेफरेंस सर्विसेज का, जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटर लाइब्रेरी लोन है, रेप्रोग्राफिक सर्विसेज है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की सर्विसेज है, यूज़र एजुकेशन है, रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एग्जिबिशन भी करती है, बेस्ट अपने डिस्प्लेज की, स्पेशल डिस्प्लेज की एग्जिबिशन भी होती है, लेक्चर्स या यूज़र ओरिएंटेड सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं। ये तो मिनिमम हर यूनिवर्सिटी इस तरह की सर्विसेज देती हैं। तो इस जैसे कि कॉलेज में हमारी एक कमेटी होती, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी एक कमेटी होती है जहाँ की जो हेड हुई होती है चीफ लाइब्रेरियन से, और वो सारे गवर्न होते हैं यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशन से। सिस्टम जो है वो स्क्रूटनाइज और इवैल्यूएटेड करता है एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को। लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट और चेयर्ड होती है वाइस चांसलर से। कभी कभी वाइस चांसलर नहीं अगर कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपने किसी मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कमेटीज जो है परचेज के लिए रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए बनाई जाती हैं। बाकी जो ज़्यादातर जो सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं वो गवर्नड होते हैं यूजीसी के रूल्स से। किस तरह से हम फर्नीचर या इंटरनल्स कंप्यूटर्स ये सब चीज़ें खरीदने में इन सब चीज़ों को परचेज करना मैं जो सहायता करती वो कमेटी ही करती है। तो अब हम एग्जांपल्स इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, डीयू है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, या जेएनयू है, जामिया मिलिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे स्पेशल लाइब्रेरीज़ के बारे में। स्पेशल लाइब्रेरीज़ कौन सी होती है? आपने देखा होगा ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, आपके पास नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, ये भी एक स्पेशल लाइब्रेरी है। हमारे BHEL की एक लाइब्रेरी है, वो भी स्पेशल लाइब्रेरी मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम R&D होती है, वहाँ पर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पे काम होता है। ये सब 20th century के बाद ज़्यादातर यूज़ में आई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च होने लगा, स्पेशल कलेक्शन होने लगा, और जो हमारे सब्जेक्ट्स जिन पे हम काम करने लगे वो भी स्पेशलाइज होते गए, काफ़ी डीप जाते रहे हम सब्जेक्ट्स को। मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हो गए, एड ऑन सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो गए, और ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इन सब लाइब्रेरीज में हैंडबुक्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट्स, बिब्लियोग्राफीज, करंट अवेयरनेस बुलेटिन्स, ये सब पीरियोडिकल्स, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्ट्स, डायरेक्टरीज, ये सब ज़्यादातर रखे होते हैं, जिन्हें हम देखा जाए तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो प्राइमरी से लेकर के हमने स्पेशल एक सेकेंड स्टेप में इन्फॉर्मेशन, जहाँ इन्फॉर्मेशन को कंडेंस किया जाता है। जो स्पेशल लाइब्रेरी की डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड ग्राफिक रिकॉर्डेड मटेरियल डीलिंग विथ लिमिटेड फील्ड ऑफ नॉलेज एंड provided by a learned society, research organization, industrial or commercial undertakings, government departments or even an educational institution. It may also be a special branch of public library serving certain interests of occupational groups such as technical library और स्पेशल सब्जेक्ट लाइब्रेरी। तो स्पेशल सब्जेक्ट लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब यही है जब आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, या अगर हमारे कई लर्नर्स आते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं तो उनकी एक लाइब्रेरी स्पेशल भी बन जाती है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, वो सब सब्जेक्ट्स को भी हम एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं, उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाते हैं ताकि वो जो उनकी टेक्निकलिटीज़ वहाँ पर जो स्टाफ है वो हैंडल कर पाए, ताकि जो रिसर्च है उनका आधा काम जो है वो सब लाइब्रेरी में जो लोग हैं वहाँ पर वो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स उनका वो काम करें, जैसे इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, ये सब बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब स्पेशल लाइब्रेरीज की खास इन्फॉर्मेशंस हैं जो करनी पड़ती हैं। स्पेशल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये वही एक्टिविटीज़ करते हैं जो इन्हें के पेरेंट बॉडी में जो जिस ऑब्जेक्टिव पे काम चल रहा होता है वही काम को आगे लेके जाते हैं। अगर हमारा इस समय कोई स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है किसी डिजीज़ पे काम करने का, तो डेफिनेटली हर कोई जिस लाइब्रेरी में जो काम कर रहा होगा स्पेशली उसी डिजीज़ पे काम करेंगे। तो इसका एम जो है प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, और उसी फील्ड में जिस पर्टिकुलर फील्ड से आपको रिक्वेस्ट आई है उस फील्ड में हर तरह की टेक्निकल, एकेडमिक या डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट को अपने स्पेशलिस्ट्स के साथ शेयर करना है। फंक्शंस जो हैं स्पेशल लाइब्रेरी के हैं, ये एग्जॉस्टिव लिटरेचर सर्च करते हैं, करके देते हैं आपको, जो मैं पहले बता रही थी। यहाँ पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव हों या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हों, वो आधा काम करके अपने एकेडमिक जो भी फैकल्टी होती है वहाँ पर उन्हें देते हैं। वो एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो मांगी गई है, फिर वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग या डॉक्यूमेंट्स, इंटरलाइब्रेरी लोन पे लेना, रेफरल सर्विसेज करके देना, करंट अवेयरनेस, ये सब स्पेशल लाइब्रेरीज जो हैं करते हैं। इसमें से हमने एग्जाम्पल आपको पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में दिया है, लाइब्रेरी ऑफ सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशंस लखनऊ का दिया है। मैंने जबानी जो आपको बोला वो बताया आपको, वो है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी या VHL की लाइब्रेरी है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि स्पेशल लाइब्रेरी का काम करती है। इसमें पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती हैं, जो हमने एग्जाम्पल है दिया है आपको न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, तो वो एक स्पेशल साइंस डिविजन है उनका, जो सिर्फ साइंस से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये है स्पेशल लाइब्रेरीज के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरीज के, जो हम डिवीजन ऑफ लाइब्रेरीज में, मल्टीपल लाइब्रेरीज में देख लीजिए, इतनी सारी लाइब्रेरीज में इंसान जॉब भी कर सकता है। स्कूल में कितनी लाइब्रेरीज हैं, कॉलेज में कितनी लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज में कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरीज हैं, इन सब लाइब्रेरीज में आपको जॉब्स के भी ऑप्शंस मिलते हैं। मोस्ट कंट्रीज जो हैं, ज़्यादातर जो भी हैं, हर किसी कंट्री की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर कि नेशनल रिसोर्सेज जो भी हैं वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल रिसोर्सेज को वहाँ पर डिपॉजिट करने की। ये हर उस पब्लिशर की या जो भी खुद पब्लिश करते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कॉपीराइट एक्ट में ही है कि हर कोई एक डॉक्यूमेंट अपना नेशनल लाइब्रेरी में डिपॉजिट करे। नेशनल लाइब्रेरी यूजुअली बहुत ज़्यादा परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह की एक फ्री कॉपी उनके पास आ जाती है, और नेशनल लाइब्रेरीज कभी भी ज़्यादातर इशू रिटर्न भी नहीं करते हैं। वो एक कलेक्शन सेंटर है बेसिकली, आपके हर उस इन्फॉर्मेशन का जो आपकी कंट्री ने छापी है, जिस तरह से भी वो छपी है, उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी में जमा हो जाती है। नेशनल लाइब्रेरीज जो है स्पेशली इस्टेब्लिश होती है, गवर्नमेंट फंड से होती है। इनको दे एक्ट एज रिपोजिटरी ओनली, जहाँ पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जमा की जाती है। वहाँ पर जो भी बुक्स हैं आपको लेंडिंग के लिए नहीं होती हैं, ज़्यादातर जो बुक्स हैं वहाँ पर डिपोजिशन के लिए ही हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है हेरोल्ड ने क्या कही है, नेशनल लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी मेंशन आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एंड सर्व्स द नेशन एज अ होल, द बुक्स आर मेनली फॉर रेफरेंस, दे यूजुअली रिसीव मटेरियल थ्रू लीगल डिपॉजिट legislation. Functions of such a library is to collect, preserve for posterity all the published records, books, periodicals, newspapers and multimedia materials of the country for the cultural heritage. The best in by a law requiring publishers to deposit copies of all publications produced by them and by purchasing books or on their countries published in their countries. The legal deposit normally has पेनल्टी कॉजेस टू एनेबल द एक्ट टू बी एनफोर्स। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि हर किसी पब्लिशर को हर जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है उसकी एक कॉपी हमें नेशनल लाइब्रेरी में, चाहे वो बुक है, पीरियोडिकल है, न्यूज़पेपर है या कोई मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, कुछ भी है, वो हमें अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए नेशनल लाइब्रेरी को देना है। अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए हम पे पेनलाइज भी किया जा सकता, उसका क्लॉज भी है कि वी आर सपोज टू डू इट, वी आर सपोज टू डिपॉजिट वन कॉपी देयर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल लाइब्रेरी के, दे प्रोवाइड लीडरशिप अमंग द नेशन लाइब्रेरीज। आपकी जो सारी लाइब्रेरीज हैं उनमें से आपकी जो मेन नेशनल लाइब्रेरी जैसे हमारी कैलकटा में है, वो हमारी लीडरशिप शो हो जाती है, लीडरशिप में शो हो जाती है सभी लाइब्रेरीज के साथ कंपेरिजन करके। ये एक परमानेंट रिपॉजिटरी भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन को जमा किया जाता है, ये हर तरह के मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर, और इन सब इन्फॉर्मेशन को जो वहाँ पर हमने डिपॉजिट की उसकी एक बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज भी दी जाती है। ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ का सेंटर भी माना जाता है। ये लाइब्रेरीज जो हैं यूजुअली वो गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है। ये देखा जाए तो एक ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर कि हमारे पास सारी एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर जमा हो जाती है। तो देख हम ये सोचेंगे कि जो भी ये नेशनल लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरी हमको हर तरह की इन्फॉर्मेशन, बुक, जर्नल, मैगजीन, जो भी कहीं जैसा भी छपा हो वो हमें एक जगह पे मिल जाता है। अगर स्पेशल लाइब्रेरीज की बात करेंगे, स्पेशल लाइब्रेरीज लेंडिंग और भी करते हैं, मगर यहाँ पर आपको खाली एक डिपॉजिटर की तरह ही काम होता है। तो ये एक आपको एक रिपॉजिटरी की तरह काम करती है नेशनल लाइब्रेरी। तो अभी तक जो हमने जाना इस लेसन में, हमने आपको जो कितनी तरह की जो हमने बताई आपको, स्पेशल एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, और कितनी तरह की एकेडमिक लाइब्रेरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं, और एकेडमिक लाइब्रेरी किस तरह से सर्व करती है अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स को, रिसर्चर्स को, और स्पेशल लाइब्रेरीज जो हैं वो किस तरह सर्व करती है अपने स्पेशलिस्ट्स को, रिसर्चर्स को उनकी स्पेशल फील्ड में, नेशनल लाइब्रेरी कैसे काम करती है, एक एंटायर नेशन को वो प्रेजेंट करती है अपने कलेक्शन से इन सभी लैंग्वेजेस में जो उस कंट्री की लैंग्वेजेस होती हैं। इस तरह से हमने बहुत सारा डिफरेंस भी देखा सब लाइब्रेरीज के बीच में, क्या क्या डिफरेंस है और कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं ये भी हम जान गए हैं। ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं और इन सब लाइब्रेरीज को जानने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। थैंक यू।